मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताहि जाते भये अरहंतादिमः जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं सतत केवल ज्ञान बोले भगवान महावीर स्वामी की आचार्य कुंद कुंद स्वामी की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज हम सभी लोग जब जब भी हमें अवसर मिलता है एक साथ बैठकर इस बात पे विचार करने के लिए उत्सुक होते हैं कि हम अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाएं। ये इसलिए कि जो बहुत छोटे छोटे जीव हैं जिन्हें ज्ञान ही नहीं है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, वे यदि अपने जीवन को अच्छा नहीं भी बना पाए तो उन्हें हम दोष नहीं देंगे। लेकिन जिसे इस बात का ज्ञान है कि किस में मेरे आत्मा का हित है और किस में मेरा अहित है, ज्ञान होने के बाद भी कोई व्यक्ति अपने हित के लिए चिंतित ना हो, अहित से बचने के लिए प्रयत्न ना करे, तो लगता है कि हम में और उन छोटे छोटे जीवों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हम चूंकि विचारवान हैं इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि अपने जीवन को हम कैसे अच्छा बनाएं। कुछ बातें जीवन में जो अच्छी हैं उनके आ जाने से जीवन बन जाता है अच्छा, कुछ बातें जो बुरी हैं वे अगर जीवन में आ जाएं तो जीवन बुरा कहलाने लगता है। और मजा ये है कि सैकड़ों अच्छाइयां हो और एक भी बुराई हो तो वो जीवन लोगों की दृष्टि में बुरा ही माना जाता है। तब हम अपना जीवन ऐसा बनाएं जिसमें एक भी बुराई ना हो, लेकिन ये काम बहुत कठिन है। ऐसा जीवन तो भगवान का ही है, वो परम विशुद्ध अवस्था तो परमात्म अवस्था ही है जिसमें कि कहीं कोई एक भी बुराई नहीं है। हमारा लक्ष्य तो वही होना चाहिए, पर इस छोटे से जीवन में उस लक्ष्य की अगर हम पूर्ति नहीं भी कर पाए तो अपने जीवन को अपेक्षाकृत अच्छा तो बना ही सकते हैं। या हम ऐसा कर लें कि जिन चीजों को हम अपने जीवन में बुरा समझते हैं या दूसरे के जीवन में वे चीजें देखने में आती हैं तो उन्हें हम बुरा समझते हैं, तो वे चीजें हमारे जीवन में ना हो, इतना तो हम प्रयास कर ही सकते हैं। किसी का अहंकार करना, किसी का झूठ बोलना, किसी का गुस्सा करना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, तब फिर हमारा अपना गुस्सा करना, हमारा खुद अहंकार करना और हमारा स्वयं अपने जीवन को बुरा बनाना, झूठ बोलना, क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं? जब हमें दूसरे की ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होती तब फिर हमारे जीवन में भी वे चीजें हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? ऐसा हमारे मन में भाव आना चाहिए, तब फिर वे बुराइयां जिनको हम बुराई समझते हैं या जिनको और लोग भी बुराई समझते हैं वे सब हम अपने जीवन से निकाल सकते हैं। बहुत जरूरी है इसके लिए सजग होना, पहली चीज है अवेयरनेस। हम सजग रहें, हम सावधान रहें। जो व्यक्ति जितना सजग और सावधान होता है वो अपनी बुराइयों को उतने आसानी से दूर कर लेता है और अपने जीवन को अच्छा भी बना लेता है। एक बहुत पुरानी घटना है, एक व्यक्ति ट्रेन में यात्रा करता था। हमारी अपनी अज्ञानता या हमारी अपनी लापरवाही देखिएगा तो मालूम पड़ेगा कि हम को कैसे सजग और सावधान होना चाहिए। वो ट्रेन में जा रहा है और एक बहुत बड़ी सामान की पोटली भी अपने साथ में लेके जा रहा है। उसने टिकट ली है और उसे सीट भी मिल गई और वो सीट पर बैठ जाता है, लेकिन पोटली नीचे नहीं रखता, उस सिर पे ही रखे हुए। लोग चकित हैं, दूसरे की अज्ञानता पर लोग बहुत चकित हो लेते हैं, अपनी अज्ञानता पर कभी चकित नहीं होते हम। लोगों ने कहा क्या करते हो, नीचे रख लो, जगह है नीचे रखने की, सिर पर क्यों रखे हो? वो व्यक्ति बहुत लॉजिशियन रहा होगा, उसने कहा कि टिकट तो मैंने अपना अकेले का लिया है, सामान को तो लिया नहीं। कहा बात तो सही है, और जब मैंने सामान का टिकट नहीं लिया तो इस गाड़ी में उसे रख कैसे सकता हूं, इसलिए मैं अपने सिर पे ही रखे हूं। ये क्या चीज है, ये किस तरह की सजगता है? ऐसी सजगता तो हम बहुत रखते हैं। वो कह रहा है कि मैंने टिकट चूंकि अपना लिया है और मैं रेलवे के साथ बेईमानी नहीं कर सकता, जब मैंने इस गठरी का टिकट ही नहीं लिया तो गठरी सीट पे भी नहीं रख सकता, यहां तक कि ट्रेन में भी नहीं रख सकता, लेकिन उस बुद्धू को कौन समझाए कि सिर पे रख के और ट्रेन में बैठना बात एक ही है, वजन तो उतना ही है ट्रेन में आपका, गठरी का भी और आपका भी। हम ईमानदार भी हैं लेकिन अपने प्रति ईमानदार नहीं है। ये सजगता जो है वो हमारी बहुत बाहरी है, आंतरिक नहीं है। हमारी सत्य के प्रति सजगता नहीं है, हमारी अपने स्वार्थ सिद्धि के प्रति बहुत सजगता है। तो जब कोई कहे कि हमें सजग और सावधान होना चाहिए तो हम बहुत अपने आसपास देखते हैं कि कितने सजग तो हैं, कोई हमें गफलत में नहीं डाल सकता, कोई हमें चीट नहीं कर सकता, और यदि हम किसी को गफलत में डालें और चीट करें तो वो मार्क नहीं कर सकता। हम इतने सजग हैं, इतनी सावधानी से चोरी करते हैं, इतनी सावधानी से झूठी बोलते हैं कि आप पकड़ नहीं सकते। देखिए हम कितने सजग हैं। मैं ऐसी सजगता की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसी सजगता तो हमारी बहुत है, हम अपनी बुराइयों को जानते हैं, ये हमारी बहुत सजगता है। ध्यान रखना, जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो व्यक्ति ही है, सिर्फ वही व्यक्ति है जो सच को जानता है। वो सच को जानता है इसलिए तो झूठ बोल रहा है, वरना काहे को झूठ बोलता है। उसे अगर जो जैसा है वैसा कह देता, लेकिन वो सच बोलना नहीं चाह रहा, सच को जानता है इसलिए तो झूठ बोल रहा है। ठीक यही स्थिति हमारी है, हम बुराइयों के मामले में बहुत सजग हैं, हम अच्छाइयों के मामले में सजग नहीं। अच्छाइयों को भी हम कन्वर्ट करके इस तरह से कि मैं देखिएगा उसका कितना बढ़िया काम दिख रहा है कि अरे देखो कितना ईमानदार आदमी है, कितना सजग है। वो कह रहा है कि मैंने चूंकि टिकट अपनी ली है इसलिए गाड़ी में गठरी कैसे रखूं। कितना सजग और कितना ईमानदार जान पड़ रहा है, लेकिन ये कितनी बड़ी चीटिंग है, ये कितना बड़ा ब्लफ है, ये कितनी बड़ी आत्म प्रवंचना है, ये अपने को ठगने की प्रक्रिया है, ये दिखाई नहीं पड़ती है। ऐसे ही हम बाहर कोई हमें ईमानदार कहे, कोई हमें अच्छा कहे, बस इसके लिए हम बहुत सजग हैं। हम भीतर तक ईमानदार और सच्चे हैं, हमारी चेतना सच्ची है या नहीं है इसके लिए हम बिल्कुल सजग नहीं हैं। सजगता अच्छाइयों के प्रति, सजगता सच्चाई के प्रति होनी चाहिए। बुराइयों के प्रति हम सजग रहें कि वे हमारे पास ना आ पाए, और अच्छाइयों के प्रति भी हम सजग रहें कि वे हमसे दूर ना चली जाएं। जैसे हम दूसरे की बुराइयों के प्रति बहुत सजग रहते हैं, क्या उतने ही हम अपनी बुराइयों के प्रति सहज सजग हैं? हम दूसरे की अच्छाइयों के प्रति इतने सोए रहते हैं कि हमें कभी दूसरे में अच्छाई नहीं दिखती, क्या हम दूसरे के अच्छाई के प्रति सजग हैं? क्या हम सचमुच सच के प्रति सजग हैं? ये हमें अपने भीतर विचार करके देखना चाहिए। एक गृहस्थ थे जो कि बाद में साधु बन गए, जरा सी बात पे साधु बन गए थे। जरा सी व्यक्ति के अंदर सजगता हो, इसको और अपन समझ लें, बहुत बड़ी कठिन बात नहीं है। हम अपने शरीर के बारे में सजग हैं कि उसको कुछ टूट फूट ना हो जाए, हम अपने आसपास के वातावरण के प्रति बहुत सजग हैं कि वो मेरे फेवर में रहे, प्रतिकूल वातावरण ना रहे, हम उसको अनुकूल बनाने की चेष्टा करते रहते हैं। जरा सी गर्मी होती है, हम बहुत सजग हैं कि उस गर्मी को कैसे हम दूर करें सब, लेकिन हमारी चेतना पतित हो रही है इसके प्रति हम सजग नहीं हैं। हमारी चेतना सत्य से विमुख हो रही इसके लिए हम सजग नहीं हैं। अगर ये सजगता हमारे भीतर आ जाए तो हमारा जीवन बदलने में, अच्छा होने में देर नहीं लगेगी। मैंने इसलिए कहा कि हमारे पास विचार करने की सामर्थ्य है, हमारे पास श्रेष्ठ विचार भी हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अपने उन श्रेष्ठ विचारों के प्रति सजग न हो और उनको अपने भीतर में प्रवेश न दे, तब फिर वे श्रेष्ठ विचार हमारे जीवन को कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं दे सकते। और आज यही हो रहा है, भारत में जितने लोग सच के बारे में जानते हैं उतने शायद कहीं भी लोग नहीं जानते हैं, लेकिन भारत में जितने लोग झूठा जीवन जीते हैं उतना शायद और कहीं लोग नहीं जीते होंगे। वे जैसे हैं वैसा तो जीते हैं कम से कम, वे सच को नहीं जानते, अज्ञानी हैं, अज्ञान की तरह जीवन जीते हैं। हम तो ज्ञानी होकर के भी अज्ञानी की तरह जीवन जीते हैं, तो हम में और उनमें क्या फर्क हुआ? हमें इस बात के लिए बहुत सजग होना चाहिए कि जैसा मैं बाहर दिखता हूं क्या वैसा ही मैं हूं? मैं मनुष्य हूं तो क्या मैं मनुष्य की तरह से जीवन जीता हूं, या कि मैं कभी कभी पशु की तरह से भी जीवन जीने लगता हूं? होना तो यह चाहिए था कि मुझे मनुष्य की तरह जीवन जी करके और देवों की तरह भी थोड़ा सा जीवन जीने की चेष्टा करनी चाहिए थी, लेकिन मैं मनुष्य की तरह भी कम जीता हूं, देवों की तरह तो कम जीता ही नहीं हूं, वैसा मैं पशु की तरह भी जीने लगता हूं। बस क्या खाना पीना और सो जाना, क्या इतना ही मेरे जीवन का कुल एम है, मकसद है, सिर्फ इतना ही? तो ये तो कोई पशु भी कर लेता है, सुबह से शाम तक खाने पीने की चीजों की खोज में और रात गिरने पर सोने की जगह खोज करके कहीं भी सो जाता है। क्या इतना ही हमारा जीवन है? क्या इसके प्रति हम सजग हैं कि मैं किन क्षणों में मेरे भीतर पशुता उतर आती है, वो किन क्षणों में मेरे भीतर मनुष्यत्व रहता है, और मैं मनुष्य बने से भी सोचता तो मैं हूं कि मैं भगवान बनूं, लेकिन ठीक ठीक अभी इंसान भी मैं बन पाया हूं कि नहीं बन पाया हूं, ये मेरी सजगता है। इसके लिए मुझे बहुत सजग होना चाहिए, बहुत अवेयर होना चाहिए। और सब चीजों के बारे में हमारी सजगता है। मैं कह रहा था आपसे कि वो सदगृहस्थ रहे, बाद को संत बन गए। जब वो सदगृहस्थ थे तो दुकान पर ग्राहकों में मशगूल थे, बहुत ग्राहक थे, बाहर पानी गिर रहा था तो ग्राहक उनके आगे जो शेड था दुकान का उसमें भी बहुत ग्राहक खड़े थे, और ये भी ग्राहकों को जल्दी जल्दी और सामान दे रहे थे और अपने हिसाब किताब में लगे हुए थे। अचानक उनकी दृष्टि आधे एक घंटे तक अपने जब काम में थोड़ी सी कमी आई, ग्राहक थोड़े कम हुए, तो देखा कि एक साधु जी भी दुकान पर खड़े हुए हैं। बहुत चकित हुए वो, मन ही मन बड़ी ग्लानि हुई कि मैं तो देख ही नहीं पाया। तो जैसे ही साधु जी को देखा और उनसे पूछा कि आप अभी आए, उन्होंने कहा कि अपना काम कर लो, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। अब तो और ज्यादा मुश्किल में पड़े ये, काम एक तरफ धर दिया, बड़े चिंतित कि साधु जी दरवाजे पर आके खड़े हैं और मैं अपने इस काम में मशगूल हूं। उनके अंदर इतनी सजगता तो थी, और इतनी सजगता अगर हो तो पूरी तरह से जागृत होने में देर नहीं लगती। फिर जैसे ही साधु जी ने कहा कि तुम तो अपना काम पहले पूरा कर लो, फिर मैं तुमसे बात कर लूंगा, तो उन्होंने कहा कि ये तो बताइए, आप बहुत देर से आके खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो आए अभी आधा एक घंटे हुआ है, लेकिन ईश्वर तो तुम्हारे दरवाजे पर 24 घंटे से खड़ा है, तुम उसकी तरफ देखते ही नहीं हो। इतना ही वाक पर्याप्त था, सत्य तो तुम्हारे सामने निरंतर है, 24 घंटे सच्चाई तुम्हारे सामने है, मैं तो सिर्फ आधे एक घंटे से यहां आके खड़ा हूं, और वो जो 24 घंटे से लगातार तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि तुम उसे उसकी खोज में निकलोगे, उसे पाने की कोशिश करोगे, तुम उसको कितना इग्नोर कर रहे हो, कितना अनदेखा कर रहे हो, उसके प्रति तुम सजग क्यों नहीं? बस इतनी सी बात उस सदगृहस्थ को बहुत मुश्किल में डाल गई थी। मुश्किल में क्या, उसके जीवन को आसान बना के चली गई थी। कहते हैं कि वो उसी दिन दुकान बंद करके और साधु के साथ चला गया था। उसने कहा बस पर्याप्त है, मेरे दरवाजे पर सच्चाई खड़ी है, मेरे दरवाजे पर मेरी अपनी वास्तविकता खड़ी हुई है, और मैं उसको अनदेखा कर रहा हूं। हम लोग तो कितना अनदेखा कर रहे हैं सच्चाई को, हम लोग तो कितना अपने जीवन को, जो हमारी अपनी वास्तविकता है, उसको कितना इग्नोर कर रहे हैं। डिनायल ऑफ रियलिटी, वास्तविकता से हम कितना पलायन करने वाले लोग हैं। हम जानते हैं वास्तविकता क्या है, जीवन को कितना अच्छा बनाया जा सकता है, लेकिन कितना बुरा हमने बना रखा है ये भी हम जानते हैं, पर हम कभी भी इस बारे में प्रयास नहीं करते कि मैं अब शेष जीवन तो अच्छा ही बनाऊं, मेरे भीतर जो मेरी अज्ञानता से बुराइयां आ गई उनको निकालूं। दूसरी बात, सजगता अकेले से काम नहीं बनेगा, सरलता भी होनी चाहिए, सिंपलिसिटी। जो व्यक्ति सजग होगा वो जरूर से सरल भी होगा। सरलता के मायने क्या, जैन दर्शन के हिसाब से देखें और इधर साइकोलॉजी के हिसाब से, दोनों के हिसाब से देखें, क्योंकि साइकोलॉजी हमारा अपना मनोविज्ञान हमारे साथ जीता है, जैन दर्शन तो ग्रंथों में अभी हमारे जीवन में तो आया नहीं है। जीवन में तो हमारे जो हमारी मनोविकृतियां हैं, जो हमारे मनोभाव हैं, वही है, उन्हीं से हमारा आमना सामना होता है, वो भी हम देख लें। हमारी सरलता कहां खत्म हो जाती है अगर हम गौर करें तो, जहां हम दिखावे में और प्रदर्शन में पड़ जाते हैं वहां हमारी सरलता खत्म हो जाती है। जो जितना आडंबर, जो जितना दिखावा और जितना प्रदर्शन करता है वो उतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो उतना जटिल होता है, वो सरल हो ही नहीं सकता। जितना चारों तरफ उसने अपने आडंबर और दिखावा फैला के रखा होगा वो उतना ही कठिन व्यक्ति होगा। देखिए ये बहुत सामान्य सी चीज है। जैन दर्शन में क्या कहते हैं कि मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। वहां एक मैसेज दे रहे हैं कि हम आपको सरल होने का उपाय बता देते हैं, क्योंकि आपके मन में कुछ होता है, वचन में कुछ होता है और क्रिया में कुछ और होता है, इसी का नाम तो दिखावा है, इसी का नाम तो आडंबर है, इसी का नाम तो कॉम्प्लिकेशंस है, जटिलता है। आप सरल होना चाहते हैं तो जो मन में हो वो वचन से करिए और वही क्रिया में लाइए। बहुत कठिन बात है और बहुत आसान भी है। मेरे मन में आया कि ये जो बाजू में जा रहे हैं इनके पॉकेट में हाथ डाल के इनके पैसे निकाल लूं, तो मेरे मन में आया है तो मैं उनसे कह दूं कि मेरे मन में आया है कि आपके पॉकेट में हाथ डालूं और सब पैसे निकाल के अपने पॉकेट में धर लूं, और इतने ही नहीं उनके कहने के बाद उनके परमिशन का इंतजार किए बिना और मैं हाथ भी डाल दूं तो क्या होगा, सरे बाजार में दो चार तमाचे पड़ जाएंगे। ये तो उल्टा रास्ता बता दिया कि आपने कहा था कि मन में हो सो वचन उचरिए, हमने वही तो किया था, हमारे मन में जो था हमने वचन में कह दिया और क्रिया में कर लिया, हम कहां सरल बने इसमें तो, और मुश्किल में पड़ गए हम। वो कहना क्या चाह रहे हैं कि जिस चीज को करने में शर्म आए और कहने में बुरा लगे उसको मन में भी मत करना, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। जो तन से की जाने पर जिसमें कि शर्म महसूस ना हो, वाणी से कहने पर जिसमें कि झूठ ना हो, वो ही मन में विचार करना। ऐसे लोगों के लिए कह रहे हैं कि जिनका मन इतना निर्मल हो गया है कि वे जो मन में सोचते हैं वही वाणी में है उनके और वही क्रिया में है, उनका जीवन इतना आसान हो गया है। शरीर और वाणी को पवित्र बना लेना ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन जिसने अपने मन को निर्मल बना लिया है, मन को सरल बना लिया है, वो क्या कहते हैं कि ह्यूमिनिटी बिगिंस टू सिंपलिसिटी एंड कंप्लीट इन प्योरिटी। आदमियत शुरू होती है सरलता से और पूरी हो जाती निर्मलता में जाकर के। इसको हम क्या कहेंगे, जब हमारे जीवन में सरलता आ जाए, खरीदूं और रास्ते में उसको लेके निकलूं और किसी से कहूं कि मैंने कार खरीदी और वो कहे कि सो व्हाट, तो मैं क्या करूं, घर रहो अपने पास, तो ऐसा लगेगा कि कहां जाके फेंकाऊं इसको, कोई मतलब नहीं, इसका उपयोग ही नहीं। ये तो लोग कह रहे हैं कि मैं क्या कहूं, आपकी कार लेने से मुझे क्या फर्क पड़ने वाला। ऐसा अगर कोई कह दे आप कपड़े खरीदे हो दिन भर में, एक भी बार कोई ये ना पूछे कि कहां से लिए, बहुत बढ़िया है, तो ऐसा लगता है कि बेकार, सारा इसी पे टिका हुआ है। सारा जीवन अगर देखा जाए, हम अपने उपयोग के लिए चीजें कम अपने पास रखते हैं, उपयोग तो कम ही कर पाते हैं, दिखावा प्रदर्शन आडंबर बहुत अधिक है। पहनने को क्या चाहिए, तन के ढकने के लिए क्या चाहिए, दो ठो कपड़े चाहिए, अरे कैसे भी ले लो, कैसे भी कैसे ले लो, ऐसे ले लो जिससे कि सब लोग देखें, हैं? समथिंग एक्स्ट्रा, मैं कुछ अतिरिक्त दिखाई पड़ूं, ये जो अतिरिक्त दिखने की चेष्टा है, इसी के तो दौर से हम गुजर रहे हैं। चाहे किसी भी जगह हो, महाराज ने तो अपनी भाषा में कह दिया उसको कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी उन्होंने थोड़े से कवित्व में, मैं तो दंग रह गया सुनकर के, क्योंकि इन सब चीजों को देखता तो आता हूं, मैं भी देखते आ रहा हूं कि हम लोग कितने आडंबर प्रिय हो गए हैं। हमको कल सुनकर के सबसे ज्यादा मुश्किल पड़ी कि जो मुझे मालूम पड़ा कि जो बरातें होती हैं उनमें अकेले भाई लोग नहीं, बहनें भी नृत्य करते हैं। मुझे पहली बार मेरी आंख खुली रह गई जब उस भाई ने मुझे कल दोपहर 4:30 बजे मुझे बताया। मैंने कहा ओ वंडरफुल, चलो अच्छा हुआ कि मैं उस सब के देखने से पहले ही और यहां आ गया। और हम देख रहे हैं, इसके बाद भी हम खुश हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, बड़ा मजा है। ये दिखावा और ये आडंबर हमें कहां तक पतित करेगा, ये आज दिख रहा है। कहां तक पतित कर सकता है, चौराहे पर लाके हमें खड़ा कर दिया, हमारे घर के सम्मान को चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया। हमारे घर का सम्मान कहलाता हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारी मां, वो हमारे घर का सम्मान है। उस सम्मान को भी मैंने चौराहे पे दांव पे लगा दिया। मैं तो इसको ऐसे ही कहूंगा, हम ही सब लोगों ने कहे के लिए, और हम सरलता की बात करें, हम कितने आडंबर और कितने दिखावे से ग्रसित लोग हैं। हमारे पास पैसा है तो हम अपने पास रखें और उसका सदुपयोग करें। हमारे पास धन संपदा ही नहीं, हमारे पास अच्छे से अच्छी चीजें हैं, उनका भी हम सदुपयोग करें। इसके लिए किसी ने मना नहीं किया। जो व्यक्ति सदुपयोग करता है वो ही सरल है, जो व्यक्ति सिर्फ उनको दिखाता है। और प्रदर्शन के मायने क्या चीज है मालूम, ये देखो मेरे पास है वो तुम्हारे पास है ही नहीं है, इसका नाम है प्रदर्शन, टू एग्जिबिट। मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि मेरे पास है, इतने में मुझे संतोष नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है, देखा मेरे पास है। इस थोड़े से के लिए मैं अपने जीवन को कहां तक पतित कर देता हूं। मैं आपसे बात कर रहा था उस नवयुवक की, जो कह रहा है कि मैं विचार करूंगा कि आप पूरी संपत्ति मुझे देंगे और मुझे उसे दिखाना नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये, मैं सोचूंगा। तो राजा कहते हैं बस परख लिया मैंने कि तुम उस संपत्ति के लायक हो, और सचमुच राजा ने उसके बिना अनुमति के और सारी संपत्ति उसे दे दी। लोग चकित थे कि हम तो मांग मांग के परेशान, और इस आदमी को पूरी संपत्ति मिल गई, देखें अब कल क्या होता है। और दूसरे दिन देखा तो वह नवयुवक जैसा एक दिन पहले तक बाजार से गुजरता था, वैसे ही कपड़े, वैसी ही चाल, वैसा ही विनय, वैसा ही सबको हाथ जोड़ने का भाव, ज्यों का त्यों। लोगों ने कहा अरे बुद्धू इतनी संपत्ति मिल गई, जरा ढंग के तो पहन लो, जरा ढंग के तो चला करे। उसने कहा फिर मतलब क्या हुआ, शर्त तो यही है कि दिखाना नहीं, और अगर मैं कुछ भी एक्स्ट्रा करता हूं तो वो इस बात की सूचना है कि मैं उस संपत्ति का दिखावा कर रहा हूं। इसलिए मैं जैसा पहले जीता था, जितने इजीली, जितने सहज और सरल रूप से मैं पहले जीता था, मैं इसलिए चिंतित था कि कहीं मेरे भीतर सहजता ना गायब हो जाए, कहीं मेरी सरलता गायब ना हो जाए, क्योंकि संपत्ति मेरे पास आए और ये सारी चीजें रही आए बहुत कठिन है, मेरा मन करेगा कि मैं इनको दिखाऊं। तो सरल होना और सहज होना ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर हम अपने जीवन को अच्छा बनाना। अभी अच्छाइयों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, अच्छाइयां तो अपने आप आ जाएंगे अगर हम सजग हैं तो, अच्छाइयां तो अपने आप आ जाएंगी हम सरल हैं तो, ये क्या कमती अच्छाई है। सजग होना और वो सत्य के प्रति सजग होना, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। इस सच्चाई के आ जाने से जीवन ही सच्चा हो जाता। और मैं सरल हूं, दिखावा नहीं करता हूं, मैं जैसा हूं वैसा ही प्रकट करता हूं, यकी वो प्रकट हो जाता है, मुझे अलग से प्रकट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या ऐसा जीवन है मेरा, मुझे विचार करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल भी आप ये मत समझिएगा, जब मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कोई बात कही है तो आप ये मत समझिएगा कि मैं कमेंट कर रहा हूं। मैं आपको यहां सामने बिठा करके और अपने किसी भी तरह से आपको दुखी करना नहीं चाह रहा हूं। मैं अपनी बात से भी आपको कोई कष्ट पहुंचाना नहीं चाह रहा हूं, ना कोई मैं व्यंग कर रहा हूं। हां, मुझे ऐसा लगने लगता है, नहीं मैं तो सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं कि क्या सचमुच हम लोग इस तरह के दौर से नहीं गुजर रहे हैं? हम लोग कितनी बढ़िया चीज अपने जीवन में करना चाहते हैं, लेकिन हम कहां किन घटिया सी चीजों में ही और संतुष्ट हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं? अगर हमने एक बढ़िया सा पेंडाल लगा के और अपनी बिटिया की शादी कर ली, और बहुत बढ़िया स्पीकर और लगा करके और बहुत नाच करके शादी कर ली, तो क्या इसको हम बहुत अच्छा मानते हैं? हम शालीनता से भी तो कर सकते थे। मुझे तो अब लग रहा है कि शायद कोई स्टाइल चेंज होगी, कोई ऐसे लोग मुझे मिलेंगे जो एक इस तरह की भी करके बताएंगे कि हाँ, बहुत शालीनता से हमने वहां पर कोई भी एक फूहड़ गाना नहीं बजाया अपनी बेटी की शादी में, हमने बेसब बजाए जो कि धर्म से संबंधित थे, तब भी शादी हो सकती। चार लोग कई बार लेंगे कि बताओ, तो हम तो सोच रहे थे कि ब्याह में जा रहे जी, तो इतने प्रवचनों जैसे मिलवा ले आए, इतने कह लेंगे और कुछ नहीं कह लेंगे। लेकिन हम क्यों नहीं इस चीज को चेंज करना चाहते? हम बिल्कुल सिंपल होकर के, मुझे तो याद आ जाती विदिशा की वो बिटिया जिसने कि अपना मेकअप करवाने से इंकार कर दिया था शादी से पहले। उसने कहा, जैसे अभी तक रही हूं वैसे ही रहूंगी, मैंने महाराज से सौंदर्य प्रसादन की सारी चीजों को, अगर मेरे से शादी करने वाले को मेरे सौंदर्य प्रसादन ही पसंद है तो मैं उनको तोहफे में भी सौंदर्य प्रसादन की सारी चीजें दे सकती हूं, मैं स्वयं उनका उपयोग नहीं करूंगी। इतनी जोर से कोई बोल सकता है? ये मुझे ध्यान है आज भी, तब आशीर्वाद भीतर से बरसता है, कहना नहीं पड़ता, हाथ उठाना नहीं पड़ता। आज भी मंच पर बैठ करके और वो घटना याद आ जाती है तो कितना कितना आशीर्वाद उसके प्रति बरसता है कि वाह, तुमने ये बहुत अच्छा करा। हम जैसे अभी तक रहे हैं, कल परसों के दिन भी हम वैसा ही जीवन जिएंगे, सिर्फ दो दिन के लिए, इतना आडंबर, इतना दिखावा, इस सब की क्या आवश्यकता है? वैसे भी किया जा सकता है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, पता नहीं आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं हैं, सहमत तो होंगे पर मुझे मालूम है कर नहीं पाएंगे। आप जमाने से आउटसाइडर हो जाएंगे और शायद जब जब भी हमें कुछ अच्छा करना होगा हमें अकेले ही करना होगा, हमें बहुत आउटसाइडर हो जाना पड़ेगा, शायद हम समाज से अलग थलग खड़े हो जाएंगे। ये सब अगर हम शुरू कर देंगे अपने जीवन में, हम उनमें मिक्सअप नहीं हो पाएंगे सचमुच, क्योंकि ऐसा जमाना हो गया। हमारा मित्र सानू आफ्तावली, नाम लेके कहता हूं, मुसलमान था लेकिन उसने अपने घर मुझे बुलाकर कभी खाने के लिए और पीने तक के लिए कभी नहीं कहा। एक बार मैंने ही कहा कि तूने आज तक अपने घर मुझे बुला के कभी भी नहीं कहा कि पानी पी ले यार, तू कहता तो मेरे से एक बार, बोलता नहीं। मैं जानता हूं कि तुम संकोच में आके और कह दोगे कि लाओ पिलाओ, लेकिन मेरे घर का कोई भी बर्तन तुम्हारे पानी पीने लायक नहीं है। मैं तुम्हें अपने घर में बिठाल के फल फूल भी नहीं बना के खिला सकता, क्योंकि मेरा चाकू भी तुम्हारे लायक फल फूल बनाने लायक नहीं। और वो जब आज भी मिल जाता है तो कहता है कि आप ठीक जगह पर हैं, मैं जहां हूं वहां मैं जितना पहले ठीक था उतना भी नहीं रहा हूं, वो एसपी हो गया है। कहता है कि मैं शुरू शुरू में बहुत मुश्किल में रहा, क्योंकि लोग मुझे पुलिस वाले नहीं मानते थे, क्योंकि मैं गाली देके नहीं जानता था, मैं किसी को मारने नहीं जानता था, तो लोग मुझे बहुत बूढ़ा समझते थे, मुझे लोग आंख दिखाने लगे थे। तब मैंने लोगों को आंख दिखाना सीखा। मैं जहां जाता हूं अब वहां पर पहले लात मार के बात शुरू करता हूं, गाली दे के बात शुरू करता हूं। महाराज साहब मैं आपसे क्या कहूं, पहले कोई व्यक्ति अगर ईमानदारों की लाइन में एक आध बेईमान होता था तो उसे लाइन अटैच कर दिया जाता था। महाराज जमाना इतना बदल गया है कि अगर मुझ जैसा कोई ईमानदार उन बेईमानों के बीच फंस जाए तो उसको लाइन अटैच कर दिया जाता है, ऐसी जगह पटक दिया जाता है जहां कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए मुझे भी इस पूरी लाइन में फिट होने के लिए बेईमान बनना पड़ा। आपसे कुछ नहीं कहूंगा लेकिन आप ठीक जगह पर हैं, वो ये रियलाइज कर रहा है। और हम धर्मात्मा कहनाने वाले लोग, हम धर्म करने वाले लोग, सब कुछ करते हुए भी, गलत करते हुए भी, और ये रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि आई एम रॉन्ग, मैं कहीं गलत हूं, मैं जो कर रहा हूं वो ठीक नहीं कर रहा, मैं अब इसको बदल दूंगा। इसलिए मैंने आपसे कहा, आपके साथ होकर के कहा कि आपको मेरी बात बहुत प्यारी लग रही होगी लेकिन आप कर नहीं पाएंगे, मैं जानता हूं। इतने मजबूर हो गए हैं हम अपने आसपास, हमने इस तरह वातावरण निर्मित कर लिया है कि उसमें हम कुछ अच्छा करना चाहें तो हम अलग थलग खड़े हो जाएंगे। जो जमाने को पसंद है वो करना पड़ेगा, जो सबको पसंद है, जो हमारी आत्मा को पसंद है, वो अब करने के दिन लद गए। जिससे आत्मा का कल्याण होता है। और तीसरी बात और कह दूं आपसे, समय तो पूरा होने को है, इसी तरह अच्छी बातें करते करते समय पूरा हो जाए तो बहुत अच्छा है। जीवन का अंत जब आए तब ऐसे ही कोई अच्छी बात कर रहे हों और जीवन पूरा हो जाए, लेकिन ऐसा कहां होता है? अच्छी बात करते करते कहां गुजरता है जीवन, बुरा करते करते ही गुजर जाता है पूरा जीवन। और जब तक हम संभल पाते हैं तब तक तो सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन क्या करें, फिर भी कोशिश तो हम करेंगे ही, जितना हमसे बनेगा उतना हम अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। यह हम सौगंध लेके निकले, हम मनुष्य हैं इसलिए यह हमारी लायबिलिटी है। और तीसरी बात आपसे कहूं कि जो जितना सजग है, जो जितना सरल है, वो उतना ही संवेदनशील भी होगा। टू इमोशनल, टू सेंटिमेंटल। लेकिन आज कोई इमोशनल हो कोई सेंटिमेंटल हो तो बेवकूफ समझा जाता है, सिली पर्सन है ना। वास्तविकता तो यही है, अगर कोई पुरुष की आंख में आंसू देखे तो उसको क्या मानेगा, क्या लड़कियों की तरह रोते हो? यानी रोना भी मुश्किल, यानी मेरे भीतर अगर किसी के दुख से या अपने ही गलतियों पर रोना आए तो रोना भी मुश्किल। इस दौर से गुजर रहे हैं हम लोग, या अगर हम किसी की भावनाओं का सम्मान करें तो हम भावुक कहलाते हैं, बड़े भावुक हैं। भावुकता से संसार नहीं चलता, मैं भी जानता हूं, भावुकता से तो संसार से पार हुआ जाता है, संसार नहीं चल सकता। ठीक कह रहे हैं जो लोग कह रहे हैं, भावुक व्यक्ति दुनियादार नहीं हो सकता, वो दुनिया से पार जरूर हो सकता। हमारे सारे तीर्थंकर इतने ही सेंटिमेंटल रहे होंगे, इतने इमोशनल रहे होंगे, इतने संवेदनशील रहे होंगे, शायद इसलिए वे पार हो गए। हमारी संवेदनशीलता तो अपने शरीर तक ही सीमित है, हम रंग के प्रति संवेदनशील हैं, हम भोजन के टेस्ट के प्रति संवेदनशील हैं, हम सुगंध के प्रति संवेदनशील हैं, पांचों इंद्रियों के विषय के प्रति हम बहुत संवेदनशील हैं। हमको दुर्गंध अच्छी नहीं लगती, हमको परफ्यूम्स चाहिए, उन परफ्यूम्स में किसी की जान जाती हो तो जाती हूं, मैं उसके प्रति संवेदनशील नहीं हूं, मेरी नाक को अच्छा लगना चाहिए इसके प्रति मैं संवेदनशील। देख रहे हैं आप अपनी संवेदनशीलता, मैं जिस संवेदनशीलता की बात कर रहा हूं वो संवेदनशीलता आज किस तरह की हो गई, हम हैं संवेदनशील, लेकिन किस तरह अपने पांचों इंद्रियों के विषयों के प्रति बहुत संवेदनशील, लेकिन चेतना के प्रति संवेदनशील नहीं है। अपनी ही नहीं, दूसरे की चेतना के प्रति, प्राणी मात्र की चेतना के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति संवेदनशील नहीं है। ऐसी संवेदनशीलता जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगी भैया, तब तक हमारा जीवन अच्छा बन नहीं सकता। हम लाख कोशिश करें, अच्छी क्रियाएं दोहरा लें, मंदिर में घंटों पूजा कर लें, लेकिन प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में उसके दुख से कातरता नहीं है, जिसको दुख कातरता कहते हैं, अगर वो नहीं है, दयालुता नहीं है, तो हम संवेदनशील नहीं है। हमने यहीं पर देखा है, यहीं पर जो हमारे पास लोग आए, उन्होंने मुझे कहा कि महाराज आप जैसा कहते हैं वैसा हमने यहीं पर देख लिया, यहां भीतर मना मना करके और खिलाया जा रहा था, और लोग अच्छी से अच्छी चीजें आधी खा रहे थे, आधी फेंक रहे थे, और बाहर दरवाजे पर 10-25 कई दिन से भूखे छोटे छोटे बच्चे ललचाई नजरों से भीतर झांक रहे थे कि शायद कोई एक बर्फी का टुकड़ा उनके हाथ पे भी रख देगा और आज उनकी दीपावली हो जाएगी। लेकिन उनकी को सिर्फ पशुवत दुत्कार करके भगा दिया जा रहा था कि भागो तो। कोई फिर जाता था, इतना छोटा सा बच्चा भी 4 साल का जो सूटेड बूटेड था और बढ़िया सी बॉटल हाथ में लिए और पी रहा है पेप्सी, जिसमें कि जेलेटिन है, बीफ जेलेटिन, जिस कंपनी वाला खुद कह रहा है कि गो माउस मिला रहा हूं मैं पेप्सी में, सुअर का माउस नहीं मिला रहा हूं मैं, गो माउस मिला रहा हूं, डोंट वरी, चिंतित मत रहिएगा, आपके खाने लायक है। और इसके बाद वो 4-5 साल का बेटा बढ़िया से पीते हुए बाहर खड़े अपने ही जब बराबर के 4-5 साल के बेटे को दुत्कार के कहता चलो हटो। तब मुझे लगता है कि हम लोग कितने संवेदनशील नहीं, कितने संवेदन शून्य हो गए। यहां से शुरू करता हूं मैं धर्म। मंदिर से मैंने कभी धर्म शुरू नहीं किया। मंदिर से शुरू करता हूं तो जीवन में जब तक झलकने नहीं लगता तब तक मानता हूं कि मंदिर से शुरू हुआ ही नहीं। इसलिए मैं थोड़ा मुश्किल वाला माना जाता हूं। मैं बहुत सफल व्यक्ति नहीं हूं, आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, मैं जानता हूं ऐसा व्यक्ति सफल हो ही नहीं सकता संसार में। वो अपने आप में सफल हो सकता है, संसार में वो सफल नहीं माना जाता। आप भी मेरे साथ आना चाहें तो आप भी असफल घोषित कर दिए जाएंगे, दुनियादार नहीं हो पाएंगे आप अगर इतने संवेदनशील होंगे। हो सकता है कि आप करने गए हो बिटिया की शादी और रसगुल्ले का पूरा बकेट लेकर के खड़े हो जाएं बाहर कि आओ तो आज, जिसने आज तक ये मलाई नहीं खाई मेरे हाथ से खा तो लो, लुट जाएगा आपका पूरा सामान। हाँ, लुट जाएगा, इसको लुटना कह रहे हैं। अरे सार्थक हो जाएगा बनाना, और हम कह रहे हैं कि लुट जाएगा पूरा सामान। एक को दो तो 25 आ जाते हैं महाराज, इसलिए एक को भी नहीं देते, आपको तो सब हरा हरा लगा था, कहूं कमा हो तो जानो। हाँ ऐसा कह देंगे आप, मैं कह रहा हूं ना कि मैं बहुत असफल व्यक्ति हूं इस मामले में, मैं खुद तो कह रहा हूं, आप क्या कहेंगे? आप तो बात को कहेंगे, मैं तो पहले ही कह दे रहा हूं। ये सब चीजें अच्छी भर लगती हैं, लेकिन जीवन में इनका आना बहुत जरूरी है। ये जब तक जीवन में नहीं आएंगी तब तक जीवन अच्छा नहीं बनेगा। और हम सब इसलिए यहां आके बैठते हैं कि थोड़ा बहुत तो एक आध इंच तो खिसके हम जहां हैं वहां से, एक इंच भी बहुत, लेकिन हम खिसक ही नहीं रहे, वहीं बैठे हैं और अपने को अच्छा भी बनाना चाहते हैं। असल में हम अच्छा बनाना नहीं चाहते, हम सिर्फ अच्छा दिखना चाहते हैं। अगर हम सचमुच अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें अपने सत्य के प्रति सजगता आज ही से शुरू करनी पड़ेगी। हमें अपने भीतर उस सच को प्रकट करना पड़ेगा उतने सरल होकर के और उतने संवेदनशील होकर के। और आखिरी घटना आपसे कहूं और बात पूरी करूं, आप भी मुश्किल में ना पड़ जाएं, नहीं तो कई कई बार तो जब मैं इस तरह की बात करता हूं तो मुझे ही पूरा दिन जीना मुश्किल होता है, आपकी तो बात ही क्या कहूं। हाँ, जिसको बात अगर लग जाएगी तो शायद फिर जीना बेईमानी लगेगा उसको, फिर दिन गुजारना बहुत मुश्किल लगता है। अभी मैं यहां से जाऊंगा, आहार करूंगा और आहार करते करते कितना कुछ सोचूंगा। मैं अभी से सोच रहा हूं कि मैंने ये सब बातें कहीं तो हैं लेकिन मेरे जीवन में कितने परसेंट हैं। आप सोचें, ऐसा नहीं सोचें, मैं तो सोचना शुरू ही कर दिया अभी, जबकि उदाहरण नहीं सुनाया मैंने, पूरी बात भी नहीं खत्म करी। और मेरे मन में आने लगा कि इतनी इतनी बड़ी बातें कह दी, भैया तुम हो वैसे कि नहीं हो, तुम वो क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते हो, ऐसा सबके भीतर क्यों नहीं आता। मैं ये भी सोचता हूं आना चाहिए। हम कितना कुछ जानते हैं, कितनी सारी बातें करते हैं लेकिन हमारा जीवन कितने अंधेरे में है, कितनी गफलत में है, कितना झूठा है। खैर, जब अच्छा बनाएं तब बनाएंगे, अभी तो कम से कम समझ तो लें। जब बैठे हैं अपन, इसी के लिए बैठे हैं। एक आर्ट गैलरी में, बहुत बड़ी आर्ट गैलरी थी, आर्ट गैलरी समझते हैं, जहां की लोगों की कलाकृतियां एग्जिबिट की जाती हैं, प्रदर्शित की जाती हैं। वो प्रदर्शनी नहीं कह रहा हूं मैं, इसलिए उसको मैं उसको आर्ट गैलरी कह रहा हूं। एक ऐसी जगह जहां की कलाकृतियों को दिखाया जा रहा है। उस आर्ट गैलरी में एक बहुत सुंदर सा आर्ट है, बहुत सुंदर सा पिक्चर है और वो इतना सुंदर है कि सब खरीदना चाहते हैं। तब फिर नीलामी करना पड़ी उस आर्ट की। उसको बनाने वाला भी दंग है कि मैंने तो बहुत बहुत सामान्य सा चित्र सोच करके बनाया था लेकिन इतना सुंदर बन गया कि लोग कह रहे हैं कि मैं लेऊं। जितनी कीमत रखी गई उससे ज्यादा कीमत देने लोग तैयार हैं।